अभिनव उन्हीं लोगों के साथ बैठकर नाश्ता करने लगा। तभी अभिनव की नज़र सीढ़ियों से उतरकर आती हुई मासा पर पड़ी, जिन्होंने हमेशा की तरह ही लाइट लेमन येलो कलर की साड़ी और साड़ी से मैचिंग येलो पर्ल की मोतियों की माला गले में पहन रखी थी। उनके बालों का जूड़ा बांधा हुआ था और वे बिल्कुल अपनी रानी सा वाले अवतार में उतरकर नीचे आईं और सीधे अपनी बड़ी सी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गईं। नरेंद्र और पल्लवी की नज़र भी मासा की तरफ गई और उन्हें देखकर नरेंद्र गुस्से से उन्हें घूरने लगा और वो अपने चेयर से उठकर जाने लगा। तभी पल्लवी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? बैठिए, नाश्ता करिए, अभी सुबह सुबह कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मासा वहीं चुपचाप बैठी रहीं। तभी राजमहल का एक नौकर जल्दी से मासा के पास आया और उसने मासा को जूस देते हुए कहा, रानी सा, आपका जूस। मासा जूस की तरफ देखते हुए बोली, आप हमें जूस क्यों दे रहे हैं? हमारे लिए हमारी कड़क अदरक वाली चाय लेकर आइए, हमें जूस की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। मासा ने बड़े ही रुआब के साथ ये बात कही और उनकी ये बात सुनते ही वो नौकर तुरंत वहाँ से चला गया। अर्पिता भी अपने कमरे से बाहर निकली और वो सीधे नीचे उतरकर हॉल में आई। उसने देखा मासा अपनी कुर्सी पर अपना एक पैर दूसरे पर चढ़ाकर बड़े ही आराम से बैठी हुई थी। अर्पिता उनके पास आकर बोली, मासा, आप यहाँ हैं? हम आपको आपके कमरे में ढूंढ रहे थे, आप यहाँ क्यों आ गई? आपको अभी रेस्ट करना चाहिए था ना, डॉक्टर ने पहले ही बोला है कि आपका बीपी अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है। अर्पिता, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं, और रही बात बीपी की तो हमने पहले ही दवाइयाँ ले ली हैं, और वैसे भी आप जानती हैं ना, हम राजमहल को ऐसे ही किसी के सहारे नहीं छोड़ सकते, हमें हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छी तरह से पता हैं, मासा ने अर्पिता की तरफ देखते हुए कहा। इतना बोलकर मासा नरेंद्र और अभिनव की तरफ देखने लगी और अर्पिता उनकी बात बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी कि उनकी मासा ये बात क्यों बोल रही थी। तभी एक नौकर मासा की चाय लेकर उनके पास आया और मासा बड़े ही आराम से चाय का कप लेकर बैठ गईं और धीरे धीरे अपनी चाय पीने लगीं। अभिनव पल्लवी और नरेंद्र की तरफ देख रहा था। वे दोनों मासा को इस तरह घूर रहे थे जैसे मानो वे उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हों। अभिनव ने उन दोनों की तरफ देखकर अपने मन में कहा, ये लोग तो अपने ही घर में एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। अगर मैं यहाँ पर चोरी करता भी हूँ तो मुझे लगता है ये लोग एक दूसरे को ही ब्लेम करते रह जाएंगे, मुझे तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। चलो, एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छी ही बात है। अभिनव इतना बोलकर मुस्कुराने लगा। उसने तुरंत अपनी नाश्ते की प्लेट उठाई और जल्दी जल्दी अपना नाश्ता करने लगा। सब लोग नाश्ता कर ही रहे थे तभी मुनीम जी मासा के पास आए और उनका हालचाल पूछने लगे। मासा उनसे कुछ बात कर ही रही थी तभी नरेंद्र और पल्लवी अपना नाश्ता खत्म करके अपने कमरे की तरफ जा ही रहे थे। तभी मासा ने तेज़ आवाज़ में उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए नरेंद्र, कोई कहीं नहीं जाएगा यहाँ से, हमें अभी के अभी एक अर्जेंट मीटिंग करनी है, सब हॉल में आइए। मासा ने बिल्कुल रानी सा वाले अंदाज में ही उन सबको आदेश दिया। अदिति और कियारा दोनों मासा की बात सुनकर तुरंत हॉल की तरफ आने लगी। अभिनव अभी भी नरेंद्र के बगल में खड़ा था। नरेंद्र ने मासा के सामने आकर उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, भाभी सा, आपकी आदत अभी तक गई नहीं ना, हमने कल ही बोल दिया था कि अब आप राजमाता नहीं हैं, तो अब अपना ये एटीट्यूड और आदेश देने वाली आदत को बदल लीजिए, जितनी जल्दी आप अपनी आदत बदल लेंगी आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। नरेंद्र की ये बात सुनकर मासा कुछ भी नहीं बोली, वे बस नरेंद्र को घूरते हुए देख रही थी। तभी नरेंद्र ने गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए कहा, हम आपकी किसी मीटिंग में नहीं आने वाले क्योंकि हमारे पास काम की कोई कमी नहीं है, ऑलरेडी ही इतने दिनों से हम यहाँ नहीं थे तो पहले ही हमारा काफ़ी सारा काम पेंडिंग बचा है, इसलिए आपको अपनी जो भी मीटिंग करनी है वो आप अकेले ही कर लीजिए। पल्लवी, जो नरेंद्र की बात सुन रही थी, उसने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, और वैसे भी हमारे पास भी काफ़ी सारे काम हैं, हमें अपने बेटे के राज्याभिषेक के लिए काफ़ी सारी तैयारी करनी है और वैसे भी वक्त ज़्यादा बचा नहीं है, तो क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। अर्पिता नरेंद्र और पल्लवी की बात सुनकर कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी मासा ने अर्पिता का हाथ पकड़ा और वे अपनी कुर्सी से उठकर खड़े होते हुए बोली, अच्छा तो आप लोग राज्याभिषेक में बिजी होने वाले हैं ना। मासा के इस तरह बोलने पर नरेंद्र तो कुछ नहीं बोला लेकिन पल्लवी ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, और वैसे भी आपका बेटा तो अब यहाँ है नहीं, तो अब राजवंशी खानदान का बड़ा बेटा ही अब राजगद्दी संभालेगा, तो उसके राज्याभिषेक के लिए तैयारी करना तो बनता है ना। मासा ने पल्लवी की बात सुनकर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने पल्लवी, आपको राज्याभिषेक की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले शायद आप लोग कुछ भूल रहे हैं। जैसे ही मासा ने ये बात कही नरेंद्र की भौहें सिकुड़ गईं और वो उनकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, क्या मतलब है आपका? मासा ने मुस्कुराते हुए कहा, मत भूलिए कि अभिमन्यु का राज्याभिषेक नहीं हुआ था और क्यों नहीं हुआ ये बात भी आप लोग जानते हैं। नरेंद्र मासा की बात सुनकर बिल्कुल चुप था। तभी मासा ने कहा, क्या हुआ, आप लोगों को याद नहीं आ रहा क्या? कोई बात नहीं, हम याद दिला देते हैं। इतना बोलकर मासा पल्लवी और नरेंद्र के सामने आईं और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा,
अभिमन्यु अभी तक राजा इसलिए नहीं बन पाए थे क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी। तो आप लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि आपके बेटे राजा बन जाएंगे? क्योंकि राजमहल के राजा बनने की जो शर्तें हैं वे शर्तें वहीं रहने वाली हैं। राजा कोई भी बने, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर आप लोगों को अभिनव के राजाभिषेक की तैयारी करनी है तो उससे पहले उनके लिए कोई अच्छी राजघराने की लड़की ढूंढिए। पहले उनकी शादी होगी, उसके बाद राज्याभिषेक। और जब तक कोई राजा नहीं है तब तक सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसा अब तक चलता आया है। और अब हमें फिर से इस बात को दोहराना ना पड़े। मासा के इतना बोलते ही अर्पिता बिल्कुल शॉक हो गई थी क्योंकि उसे इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ का दिमाग इतना चलता था इस उम्र में भी और इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी। अर्पिता ने धीमी आवाज में कहा, अरे हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, हम इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हैं। अर्पिता ये बात सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर अभिनव पर गई जो चुपचाप ये सब कुछ सुन रहा था। अभी उसे सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी लेकिन पल्लवी और नरेंद्र का मुंह देखकर वो इतना समझ गया था कि वहां पर जो कुछ भी हुआ था वो शायद ठीक नहीं था क्योंकि उन दोनों के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। मासा इतना बोलकर वहां से जाने ही वाली थी कि तभी वे पीछे मुड़ी और उन्होंने नरेंद्र और पल्लवी की तरफ देखते हुए कहा, कुछ और कहना है किसी को? किसी ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उनकी इस बात से सबकी बोलती बंद हो गई थी। अर्पिता बड़ी ही हैरानी से मासा की तरफ देख रही थी। मासा चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अर्पिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो मासा के साथ उनके कमरे में जाए या नहीं, वो उनके पीछे जाने ही वाली थी। तभी मासा अपनी जगह पर रुककर पीछे मुड़ी और उन्होंने मुनीम जी की तरफ देखते हुए कहा, मुनीम जी आप हमारे साथ चलिए, हमें आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मुनीम जी ने जैसे ही मासा की बात सुनी उन्होंने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाया और वे उनके पीछे पीछे उनसे बात करने के लिए चले गए।
मासा वहां से जा चुकी थी लेकिन अर्पिता अभी भी वहीं खड़ी थी। उसने नरेंद्र और पल्लवी की तरफ देखा, उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था, दोनों ही काफी ज्यादा खिसियाए हुए लग रहे थे। अर्पिता ने उन दोनों की तरफ देखकर धीरे से ना में अपना सिर हिलाया और वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वहीं पल्लवी और नरेंद्र गुस्से से अपने कमरे के अंदर आए और अभिनव को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो भी उन दोनों के पीछे पीछे आया और नरेंद्र अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तभी पल्लवी ने कहा, हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि भाभीसा ने इतनी बड़ी चाल चल दी, सच में इनका दिमाग इतना तेज कैसे चलता है, कभी कभी तो हमें समझ ही नहीं आता। पल्लवी ये सारी बातें बोल रही थी और वो एक तरह से मासा की तारीफ ही कर रही थी लेकिन नरेंद्र से ये सब सुना नहीं जा रहा था। वो तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, पल्लवी आप चुप रहेंगी थोड़ी देर, हम सब जानते हैं कि भाभीसा कितनी ज्यादा चालाक हैं और आप हैं कि इतनी देर से उनके ही गुणगान किए जा रही हैं। पल्लवी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं हम उनके गुणगान नहीं कर रहे, हम तो बल्कि ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी चालाकी में हमें भी फंसा लिया। नरेंद्र ने पल्लवी को घूरते हुए कहा, उन्होंने हमें नहीं फंसाया, हम खुद फंसे हैं, हम इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, राजा सा बनने के लिए सबसे बड़ी शर्त यही तो थी और इसी के लिए तो हमने इतना सब कुछ किया था और हम यही बात भूल गए। पल्लवी नरेंद्र की बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान होते हुए बोली, तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे? पल्लवी को इस तरह परेशान होते देखकर नरेंद्र ने थोड़ा सोचते हुए कहा, हमने जो सोचा है हम तो वो करके ही रहेंगे और अभिमन्यु को तो हम राजा नहीं बनने दे सकते। राजा बनने का अगर कोई हकदार है तो वो है सिर्फ और सिर्फ हमारा बेटा अभिनव, और अभिनव ही राजा बनेगा। और रही बात उस शर्त की, तो हम अभिनव की शादी एक अच्छे राजघराने में कर देंगे और एक बार अगर अभिनव की शादी हो गई तो फिर हमें किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम सब चीज़ बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर लेंगे। पल्लवी ने अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, वैसे भी हमारा बेटा तो है ही इतना अच्छा, कोई भी राजवंशी परिवार हमें मना नहीं करेगा। इतना बोलकर पल्लवी अभिनव की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। तभी अभिनव ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, एक मिनट ये तुम लोग क्या बात कर रहे हो? देखो मैं पहले ही बोल देता हूँ, मैं कोई शादीवादी नहीं करने वाला, पहले ही तुम लोगों के चक्कर में यहाँ पर आकर फंस गया हूँ और यहाँ पर मुझे जेल जैसी फीलिंग आ रही है और अब तुम लोग यहाँ पर मेरी शादी करने का भी बंदोबस्त कर रहे हो।